शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से।
ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में शांति की खोज रहती है। मानव मन की ये लंबे समय की प्यास है। इंसान के पास सब कुछ हो पर अगर जीवन में शांति नहीं है तो वो सुख भी भाता नहीं है। हम कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, मन में शांति हो, घर में शांति हो। अगर हर आए दिन कलह क्लेश होता रहता है, मन भटकता रहता है और शांति की प्राप्ति के लिए ही इंसान विभिन्न प्रयास करता रहा है। कई लोग अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियों को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग घर बार छोड़कर जंगल में गए थे वे आज शहरों में आकर आश्रम बना करके बैठे हैं। तो शांति जंगलों में नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि शांति के लिए बाहर भटकना नहीं है, अपने भीतर जाना है। लोग शांति के लिए दूर गिरिकंदराओं में चले जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, कोई समुद्र के किनारे नदियों के किनारे चले जाते हैं, बाग बगीचों में चले जाते हैं। जितना समय कुदरत की गोद में रहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, उतना समय उनको शांति का अनुभव होता है। जैसे ही वास्तविक जीवन में आते हैं फिर अशांत हो जाते हैं। सिद्ध है कि ये प्राकृतिक शांति है। जब तक प्रकृति के सानिध्य में है वो जो शांति का अनुभव होता है वो प्राकृतिक शांति है। लेकिन हमें तो मन की शांति चाहिए। प्राकृतिक शांति थोड़े समय के लिए प्रकृति के सानिध्य तक मिलती है। कई लोग शांति के लिए यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं, उसमें कितना घी जौ तिल डालते हैं, कितना खर्च होता है। शांति के लिए हम यज्ञ करते हैं पर ऐसे हजारों लाखों यज्ञ होने के बाद भी हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती ही जाती है। और ऐसे द्रव्य यज्ञ कितने लोग कर सकेंगे? वो सोचते हैं कि हम वातावरण को शुद्ध करते, इविल्स को भगाते हैं, बुरे वाइब्रेशंस खत्म होते हैं, पर हर कोई इतने यज्ञ नहीं कर सकता है। इसलिए उससे भी हम सदाकाल की शांति नहीं पा सकते। कई लोग शांति सम्मेलन करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन देखा गया है कि शांति की चर्चा करते करते वो खुद ही अशांत हो जाते हैं, आपस में मनभेद मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, तो शांति हो ही नहीं पाती है। शांति बनी रहे उसके लिए जो लोग कार्य करते हैं पीस प्राइज भी दिए जाते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य की मनोवृत्तियां शुद्ध नहीं है, मन में जब तक विकार है, क्रोध है, अहम है, द्वेष है, सत्ता की लालसा है, धन की लोलुपता है, जब तक मनोविकार है, ऐसे अल्पकालीन बाह्य प्रयासों से हम वास्तविक शांति स्थापन नहीं कर सकते। हमें शांति की यथार्थ व्याख्या को भी समझना होगा। लोग समझते हैं कि अशांति की एब्सेंस शांति, समाज में लड़ाई झगड़े नहीं है, दंगे फसाद नहीं है, कोई प्रकार के हुल्लड़ हड़ताल नहीं है, तो अखबारों में समाचार में छपते हैं, बोलते हैं कि आज इस एरिया में एवरेज शांति रहे, माना लड़ाई झगड़े अशांति की एब्सेंस को हम शांति समझ रहे, परंतु वो सही नहीं है। शांति अपने आप में एक शक्ति है, शांति आत्मा की स्थिति है, शांति एक अलौकिक अनुभूति है, शांति की एब्सेंस को अशांति कहते, न कि अशांति की एब्सेंस को शांति कहे। जैसे अंधकार कोई चीज नहीं है, भाई इस हॉल में बिल्कुल घना अंधेरा है, उसको कैसे भगाएं? तो अंधकार कोई चीज नहीं है कि भाई हम टोकरे भर भर के बाहर फेंके और अंधकार से हॉल को खाली कर, पर अंधकार मिटाने की विधि क्या है? एक ज्योति जलाओ, एक दीपक जलाओ, तो अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। तो प्रकाश की एब्सेंस को अंधकार कहते हैं, अंधकार कोई चीज नहीं। इसी प्रकार जितना हम शांति की स्थिति धारण करते जाएंगे, ऑटोमेटिक अशांति खत्म होती जाएगी। आज हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर शांति की, प्रेम की शक्ति नहीं रही है, कम होती जा रही है, इसलिए गुस्सा आ जाता है। और आज चारों ओर इंसान के अंदर वो शांति की स्थिति ना होने के कारण इतने लड़ाई झगड़े कलह क्लेश मारामारी खून युद्ध हिंसा का वातावरण हो गया है कि इंसान एक क्षण सोचने लगता है कि शांति कभी हो भी सकती है या नहीं। चारों ओर इतनी अशांति है, अनबन है, मनमुटाव है, कलह क्लेश है कि लोग एक क्षण ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शांति वास्तविक है या भ्रांति। लेकिन हम स्वयं को पूछे कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें जीवन में क्या चाहिए। मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्ति वृत्ति शांति की रही है, इसलिए हर एक को जीवन में शांति चाहिए। आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, हरेक आत्मा का ये असली गुणधर्म है, इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए। हमें शांति चाहिए, हमारा ये संकल्प ये इच्छा ही सिद्ध करती है कि जरूर पहले जीवन में शांति थी। हमने कभी शांति का अनुभव किया है तब तो हमें फिर से शांति चाहिए। अगर कभी संसार में शांति है ही नहीं, हुई ही नहीं है, कभी भी संसार में शांति की स्थिति रही ही नहीं है, तो इंसान को शांति की इच्छा क्यों होती। कई बार संसार के आदि मध्य अंत का चारों ही युगों का सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ये संसार चक्र का संसार के आदि मध्य अंत का सही ज्ञान न होने के कारण जो लोगों के मन में शास्त्रोक्त या मानव मन की दी हुई बातें भरी हुई है तो वो यही सोचते हैं कि अनादिकाल से संसार में लड़ाई झगड़ा ही होता रहा, दैवी और आसुरी वृत्तियों का संघर्ष ही चलता रहा। इसलिए कथाओं के आधार से वो कहते हैं कि कृष्ण के समय भी कंस था, राम के समय भी रावण था। माना हर युग में लड़ाई झगड़े अशांति ही है, पर आप खुद गहराई से सोचिए कि अगर संसार में कभी भी पूर्ण शांति की स्थिति रही ही नहीं है तो फिर इंसान को फिर पूर्ण शांति की इच्छा क्यों होती। जरूर संसार चक्र का कोई समय ऐसा रहा है हम मनुष्य आत्माओं ने इस संसार यात्रा में कभी पूर्ण शांति का अनुभव किया है, तब तो फिर हम चाहते हैं और वो हमें ईश्वर की याद से, सत धर्म की धारणा से अनुभव हुई है, तब तो लोग आज भी भगवान की शरण में जाते हैं। अगर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी भी शांति हुई ही नहीं है, लड़ाई झगड़े ही चले हैं, तो हम क्यों धर्म की शरण में जाते हैं, हम क्यों भगवान की शरण में जाते हैं? इसलिए मानव मन की ये इच्छा कि मन में शांति हो, जीवन में शांति हो, संबंधों में शांति हो, ये बताता है कि ऐसा समय संसार का रहा है। और आज सुबह आपने सृष्टि चक्र का लेसन किया है और उससे आपकी बुद्धि में स्पष्ट है कि वो समय सतयुग और त्रेता युग का ही रहा है, जब संसार में पूर्ण सुख शांति और समृद्धि बनी रही है। आज समय और प्रकृति के संसर्ग में आते आते परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज नई से पुरानी होती है, उस नियम अनुसार वो संपूर्ण पवित्र सत्य सुख आनंद शांति समृद्धि से भरा हुआ वो समय संसार का वो स्वरूप ही आज कलियुगी स्थिति में बदल गया है। इसलिए संसार चक्र में अभी जो समय चल रहा है, कलियुग अंत और सतयुग आदि का ये संधिकाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, जब स्वयं भगवान विश्व में शांति स्थापन करने के लिए आते हैं। आज हमारा मॉर्निंग जो ज्ञान मुरली का डिस्कोर्स था, उसमें भी शिव बाबा ने हम आत्माओं को यही बताया कि कोई भी मनुष्य आत्मा सदा काल के सुख और शांति किसी को नहीं दे सकते, केवल परमात्मा जो शांति का सागर है, विश्व शांति दाता है, दुख हरता सुख करता है, जो सदा पावन पतित पावन है, वो ही हमें सत्य ज्ञान और योग के द्वारा पवित्र बनाते हैं, जिस पवित्रता से हम शांति और सुख की अनुभूति जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन की शांति चाहिए तो वो कोई हमें बाहर से नहीं पानी। शांति कोई चीज नहीं है जो हम पैसे से खरीद सके, बाजार से मंगा सके। हम कहते हैं ना, धन से साधन खरीद सकते हैं, उससे सुविधाएं हो सकती, पर सुख और शांति की अनुभूति तो आत्मा की ऊंची स्थिति से ही हो सकती। इसलिए आप देखिए, अगर धन और साधन से ही सुख और शांति जीवन में आ सकती थी, तो सभी साधन संपन्न, सभी धनाढ्य सुखी होने चाहिए थे। लेकिन क्या वो सुखी हैं? है? नहीं। विश्व का सबसे धनाढ्य देश अमेरिका, जहां विश्व के सबसे ज्यादा मानसिक रोगी पागल लोग रहते हैं। इसलिए शांति कोई चीज नहीं है जो हम खरीद लें, बाहर से ले आए। ये सूक्ष्म अनुभूति है, ये आत्मा की स्थिति है। इसलिए स्व में स्थित होने की जरूरत है। परमात्मा ने तीन मूल सत्य हमें बताए हैं, जिनके आधार से हम पुनः अपनी शांत आत्म स्थिति बना सकते हैं। शांति आत्मा का गुण है, धर्म है। इसलिए जब तक आत्माभिमानी नहीं बनते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं बनते हैं, आत्म स्वरूप में मन को स्थित नहीं करते हैं, हम वास्तविक शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है, हवा, ये वायु जिसको कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व है प्रकृति। इन पांच तत्वों से शरीर बना, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए। कभी सोचते हो हमें पानी क्यों चाहिए? कहते हैं हवा, पानी, खुराक मानव जीवन की ये प्राथमिक भौतिक आवश्यकता है। हवा, पानी और खुराक। पर हमें हवा क्यों चाहिए? अगर श्वास लेने के लिए स्वच्छ हवा न मिले तो सफोकेशन, घबराहट होता है। हम कहेंगे भाई खिड़की दरवाजे खोल दो, घबराहट होती। थोड़ी स्वच्छ हवा आवे तो अच्छा लगे। हमें समय पर पीने के लिए निर्मल जल न मिले तो हम कितने परेशान हो जाते। उस समय कितना भी अच्छा भोजन का थाल भर के ले आओ तो भी इंसान कहेगा कि पहले पानी दो, पीछे भोजन करेंगे। अगर योग्य खुराक हम नहीं लेते हैं तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर हवा पानी खुराक से बना। फिजिकल साइंस कहता है 60-70% बॉडी में पानी है। शरीर हवा पानी खुराक से ही बनता है, इसलिए हमें हवा पानी खुराक चाहिए। पर इंसान को केवल हवा पानी खुराक नहीं चाहिए, इन भौतिक आवश्यकताओं के अलावा हवा पानी खुराक रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, इन भौतिक आवश्यकताओं के अलावा क्या हमें और भी कुछ चाहिए? चाहिए हाँ, क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए। अगर जीवन में शांति नहीं है तो तनाव उत्पन्न होता है। अगर इंसान को निस्वार्थ सच्चा प्यार नहीं मिलता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, निराश हताश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अगर जीवन में खुशी और आनंद नहीं है तो जीवन शुष्क नीरस अनुभव होता है। तो कभी सोचते हैं आप कि हमें क्यों शांति चाहिए, क्यों सुख चाहिए, क्यों आनंद चाहिए, क्यों प्यार चाहिए, क्यों चाहिए? कौन बताएगा आप में से? हाँ, क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा इन गुणों का स्वरूप है। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है तो 5 तत्व हमें चाहिए, पर इंसान केवल 5 तत्वों का बना हुआ शरीर मात्र नहीं है। प्रथम लेसन में ही आपने समझा है कि हम शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा वास्तव में क्या है? 7 गुणों का स्वरूप है। जो पहले दिन आपको बताया था कि हरेक आत्मा के असली गुण धर्म 7 है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हर आत्मा की 7 ओरिजिनल क्वालिटीज है। आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है, सार है। इसलिए हमारी ये आध्यात्मिक आवश्यकता है, आंतरिक आवश्यकताएं हैं, सूक्ष्म आवश्यकता है। इसलिए पहला सत्य कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा ही शांति हूं। जब इस सत्य को हम समझ लेते हैं और उसी स्मृति का स्वरूप बनते हैं, हमें स्वयं में ही शांति का अनुभव होता है कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म ही शांति है। जब हम ये भूल जाते हैं, शरीर भान में आते हैं, देह भान के कारण विकृति उत्पन्न होती है, जिसको विकार कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक हम इन विकारों के वशीभूत है, इंद्रिय रसों के आकर्षण में है, हम मन से शांत स्थित रह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ना, इंसान जितना बॉडी कॉन्शियस बनता जाता है, देहभान में आता है, इतना उनको खाने की पीने की पहनने की घूमने की देखने की सुनने की बोलने की इच्छाएं रहती है। ये इंद्रिय रस है। और अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि अनावश्यक देखना, अनावश्यक बोलना, बिन जरूरी सुनना, ये सब इच्छाएं ही मन को भटकाती है। इसलिए कर्मेंद्रियों के विषयी रसों की हलचल से पर आत्मा की अचल स्थिति को शांति की स्थिति कहते हैं। और आप देखो, आज से 100 वर्ष पूर्व के मानव जीवन को देखिए, कम साधनों में, कुदरत की गोद में नैसर्गिक जीवन इंसान जीता था, बहुत शांति सुखानंद प्रेम में। पर जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। इसलिए मन निरंतर द्वंद में रहता है, मन इच्छा के वश, मन से दौड़ते रहते। अब आप बताइए, दौड़ना नेचुरल है कि चलना नेचुरल है? क्या नेचुरल है? चलना नेचुरल है ना, और हम मन से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इच्छाओं के वश, क्योंकि जो है हमारे पास वो हमें कम लगता है, जो है वो कम है, और भी चाहिए चाहिए चाहिए, ये रोग हर इंसान को आज लगा हुआ है। और हम कंपैरिजन और कंपटीशन में आते हैं। कहते हैं ना कि पड़ोस में नई कार आती है तो हमें अपनी कार पुरानी लगने लगती है, हमारी भी नई आनी चाहिए। इच्छाएं इच्छाओं के वश परवश है, आवश्यक जरूर होना चाहिए, जो जरूरी है, धन साधन सुविधाएं बेशक हम प्राप्त करें। पर कहते हैं इंसान जब नीड से ग्रीड में जाता है तो अशांति उत्पन्न होती है। नीड माना आवश्यक जरूरी। जो खाना पीना पहनना ओढ़ना रहना जरूरी है वो बेशक हमारे पास, पर नीड से ग्रीड में लोभ में जब चले जाते हैं तो अशांति, कंपैरिजन, कंपटीशन, लड़ाई झगड़े, लोभ लालच ये शुरू हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने ये सही कहा था कि मदर अर्थ है सफिशियंट फॉर एवरीवन्स नीड। मां धरती के पास हरेक की आवश्यकता पूरी करने जितना सब कुछ है, पर्याप्त है, बट नॉट फॉर ग्रीड, लोभ लालच के लिए। जब हम लोभ लालच में चले जाते हैं तो इम्बैलेंस होता है, किसी के पास ज्यादा हो जाता है, किसी के पास अभाव हो जाता है। इसलिए क्योंकि देह भान में आने से दैहिक, भौतिक, सांसारिक, लौकिक इच्छाएं, कामनाएं बढ़ने लगती है। जितना आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, आत्म भान में रहेंगे तो बैलेंस रहेगा, क्योंकि आत्मा तो गुणों का स्वरूप है। हमें अटेंशन रहेगा, बैलेंस रहेगा कि जीवन में गुण, चरित्र, शक्तियां, ज्ञान वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला सत्य, मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये स्मृति हमें पक्की रहे। और जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं, मन शांत होने लगेगा, स्व में केंद्रित होने लगेगा, क्योंकि आत्मा बिंदु है, पॉइंट है, तो मन समेटने लगेगा। देह भान में आने से मन विस्तार में जाता है, इसलिए पहला अभ्यास मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरा सत्य, हम शांति के सागर, शांति दाता परमात्मा के बच्चे। शांति, हमारा पिता शांति का सागर, सोची पिता शांति दाता, शांति सागर है, और हम अशांत क्यों हैं? पिता परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, हम दुखी क्यों हैं? पिता सदा पावन, पतित पावन है, हम आत्माएं उनके बच्चे पतित विकारी क्यों हैं? क्योंकि हमारा भगवान के साथ योग नहीं है, संबंध नहीं रहा है, इसलिए प्राप्ति नहीं है, इसलिए हम भटकते हैं या भगवान से भी मांगते रहते हैं। हे भगवान, शांति दो, सुख दो, क्यों मांगते जबकि हम उनके ही बच्चे हैं? ये वर्षा ये बर्थराइट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि योग नहीं है, रिलेशन कनेक्शन नहीं। जीवन में चाहिए शांति, और मन कहां जोड़कर बैठे हैं? जहां से अशांति मिलती हो दुख मिलता। घर में बिजली चाहिए तो लाइट हाउस, पावर हाउस से कनेक्शन करना पड़ेगा। घर में नलके में पानी चाहिए तो पानी की टैंक से, रिजर्वायर से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो शांति दाता कौन है? वहां मन लगाना है ना, तो शांति मिलेगी। और हम मन कहां लगा कर बैठे? चेक करो, मन और बुद्धि कहां आसक्त किया है? उन बातों से, व्यक्तियों से, पदार्थों से, साधनों से, जहां से शांति कभी नहीं मिल सकती। इसलिए सोर्स, इटर्नल सोर्स, अविनाशी स्रोत से संबंध जोड़ना है। एक फवारे के समीप जाने से ही शीतलता मिलती है, अग्नि के समीप जाने से ही गर्मी मिलती, नदी किनारे जाने से ही ठंडी हवा का अनुभव होता। हमें मांगना नहीं पड़ता है कि हे फवारे शीतलता दो, हे अग्नि गर्मी दो, हे नदी समुद्र ठंडी हवा दो। नहीं, उनका सानिध्य ही अनुभव कराता है। तो जो शांति का सागर है, शांति दाता है, उनके समीप जाना है, उनसे दिल जोड़ना है, उनसे प्यार करना है। ऑटोमेटिक शांति, सुख, आनंद जीवन में प्राप्त होता है। भगवान से मांगने की भी आवश्यकता नहीं, कहने की, हाथ जोड़ने की, विनती करने की आवश्यकता नहीं। हम उनके बच्चे हैं, वारिस हैं, पर हमारा उनसे संबंध और प्यार। और तीसरी बात, हम शांति धाम के निवासी, हमारा असली घर शांति धाम है, जहां सदा शांति, पूर्ण शांति है। क्योंकि आत्मा अपनी ओरिजिनल सत्य शुद्ध आत्मा स्थिति में स्थित है, अपने असली घर को याद कर। हम वो बातें याद करते हैं, वो लोगों को याद करते हैं जिन्होंने दुख और अशांति दिया है, वही बातें रिपीटेडली सोचते हैं, तो दुख और अशांति ही अनुभव में आती। इसलिए अब मन उस चिंतन में लगाएं जिससे शांति की अनुभूति है। तो आज का ये नुमा शाम का समय, संध्या का समय, इस अनुभूति के लिए सर्वोत्तम समय है। संध्या के समय लोग भी भक्ति में भी संध्या होते ही मन को और सब बातों से हटाकर 2 मिनट 3 मिनट भी भगवान को याद करते हैं। घर में कोई दीवा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इवन दुकानों में भी दिन भर अनेक प्रवृत्ति में मन फैलाकर रखते, संध्या होते ही मन समेट कर 2 मिनट 10 मिनट भी भगवान की याद में बैठते। और आपने देखा होगा कि अधिकतर स्कूल कॉलेज ऑफिसेस कारोबार संध्या होते ही लोग समेटने लगते हैं। ये तो आजकल कलियुगी दुनिया में जनसंख्या बढ़ी, दैहिक बातें बढ़ी, तो लोग रात रात देर रात तक घूमना जागना और देरी से सोना देरी से उठना ये लाइफस्टाइल हो गई। हमारे बुजुर्ग हमें क्या सिखाते रहे, जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह अमृत वेला और शाम संध्या का समय परमात्मा याद के लिए, शांति की अनुभूति के लिए उत्तम समय। प्रकृति भी उस नियम में चलती, आप देखो पंछी भी सारा दिन इधर उधर उड़कर दाना चुगकर संध्या होते ही वापस अपने घोंसलों में जाने लगते हैं। गाय भैंस बैल भी सारा दिन इधर उधर चारा चरकर शाम होते ही अपने मालिक के घर जाने लगते हैं। तो संध्या के समय अगर आप योग अभ्यास करने का नियम बनाएंगे तो मन को समेटने में मदद मिलेगी। तो अभी हम योग अभ्यास की ओर चलते हैं। शांति की अनुभूति के लिए उस अनुरूप चिंतन में हम जाएंगे और भी बहने आपके सामने योग अभ्यास के लिए आएंगी, बैठेंगी। जिन बहनों के जीवन पवित्र हैं, योगी हैं, जो नियमित योग अभ्यास करते हैं, हम सब मिलकर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और इतना गहरी शांति की अनुभूति करें जो लंबे समय तक हमें शांति में रहना पसंद आए, आवाज करना, अनावश्यक बातें करना पसंद न आए। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी रखकर बैठे, हाथ में गोद में चीजें ना रखें, साइड पर रख दीजिए और एक दो से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके नहीं बैठना है। आपके सामने सर्वोत्तम योगी पिता श्री ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने है और चैतन्य में भी राजयोगी बाल ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्रधारिणी बहने भी बैठी हैं। आपके सामने योग अभ्यास के लिए जो बहन बैठी हैं, उनके मस्तक में देखें, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। मैं किस प्रकार चिंतन करना है शांति की अनुभूति के लिए, मैं विचार देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में, आप उस अनुभूति में साथ साथ मन को ले चलना। आस पास की व्यक्तियों से और परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। एक डिटैच ऑब्जर्वर साक्षी दृष्टा बन जाइए। मन के विस्तार को समेट लीजिए। सब तरफ से न्यारा होकर भ्रकुटि के बीच मस्तक में स्वयं के निराकार आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। स्वयं के प्रति केंद्रित हो जाए। मस्तक के ऊंचे तख्त पर विराजमान मैं चमकता हुआ चैतन्य सितारा आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी चैतन्य शक्ति मैं आत्मा एक लाइट हूँ, एक माइट, मैं आत्मा शांत और स्थिर सत्य और चैतन्य शुद्ध पवित्र जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ मन शांत हो जाता है। मैं स्वयं भी एकाग्र होने लगती हूँ। मन अंतर्मुखी बनता जाता है। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे आत्मा की स्थिति है। शांति एक अलौकिक अनुभूति है। मैं आत्मा शांति धाम की निवासी हूँ। इस देह और देह की दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार प्रकृति का छठवां अति सूक्ष्म ज्योति तत्व ब्रह्म तत्व है। मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी हूँ। उस शांति धाम में मैं आत्मा अपने निराकार चैतन्य बीज रूप ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित शरीर प्रकृति कर्म इन सभी बंधनों से मुक्त मैं एक अनंत शांति की अनुभूति में समाई हुई हो। मेरे इस असली पावन रूहानी घर में सर्वत्र शांति है। संपूर्ण शांति पूर्ण शांति छाई हुई है। मैं आत्मा एक चैतन्य बीज के समान शांति शक्ति शुद्धि की अनुभूतियों से भरपूर मैं जानती हूँ। शांति के सागर अखूट शांति के भंडार शांति दाता शिव बाबा की मैं आत्मा संतान जैसे ही मैं शिव बाबा को याद करती हूँ शांति की सहस्त्र धाराओं अनुभव करती हूँ। शांति का एक अलौकिक प्रवाह मुझ आत्मा पर आता रहता है। जैसे ही मन की आंख से ज्ञान नेत्र से उस परम ज्योति पिता परमात्मा को मैं देखती हूँ, उनके स्मृति चिंतन में रहती हूँ। मैं अनंत शांति शक्ति की अनुभूतियों में समा जाते हैं। शिव बाबा के सानिध्य में मैं स्वयं शांति से भर जाती हूँ। मैं अपने हर विचार में भावना में मन के सूक्ष्म भाव तरंग में शांति अनुभव करते हैं। मेरा अस्तित्व ही शांतिमय हो जाता है। शांति की ये अनुभूतियां अंग अंग को शीतल कर रही है। अब मैं स्वयं ही शांति दूत बन गई हूँ। शांति दाता की संतान मैं भी शांति दूत पीस मैसेंजर मुझे अपने विचारों से भावनाओं से नैन चैन से वाणी और व्यवहार से चेहरे और चलन से सर्वत्र शांति फैलाने स्वयं में भरपूर तृप्त संतुष्ट हर मन में शांति सर्वत्र शांति इस रूहानी शांति में आनंद भी समाया हुआ है।